मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 13 नवंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सब अपने देश के एक बहुत ही सुंदर परिदृश्य के गवाह रहे हैं, परिदृश्य के गवाह और गवाही इस बात की कि आपने देखा कि किस तरीके से अयोध्या में राम जन्म भूमि बनाम बाबरी मस्जिद का मामला जो इतने लंबे सालों से चला आ रहा था बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझ गया। सभी ने न्यायालय के निर्णय को सरमाथे पर लिया और वातावरण सब कुछ इतना शांत बना रहा कि लग ही नहीं रहा था कि सच में कोई इतना अधिक उलझा हुआ मामला सुलझा हो। दोस्तों खासकर मेरी पीढ़ी के लोग जिन्होंने इस तरह के मामलों में खासकर जो धार्मिक मामले होते हैं उनमें बहुत अधिक कटुता बढ़ते हुए देखी है, आप कह लीजिए कि ऐसे दौर में हवाओं में एक तरह से बारूद की तीखी गंध को भी महसूस किया है, उन लोगों के लिए तो यह अवसर एक बेहद सुखद अवसर था। मतलब यूं कह लीजिए कि कल्पनातीत, कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसके लिए पूरा का पूरा देश बधाई का पात्र है, तो मैं पूरे देश को आप सब अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बधाई देना चाहूंगा, पूरे देशवासियों का अभिनंदन करना चाहूंगा और देशवासियों के हर एक वर्ग का, चाहे वो राजनेता हों, धार्मिक वर्ग के लोग हों, समुदाय के हों, जो भी हों, अभिनंदन के जबरदस्त रूप से पात्र हैं। यहां उन्होंने जिस परिपक्वता का प्रमाण दिया है वह अद्भुत है और ऐसा लग रहा है जैसे कि 9 नवंबर के बाद से जो हिंदुस्तान की चेतना है वह एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। तो दोस्तों यह एक स्थिति है। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि चलिए यह सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, काश कि ये समझौते के तहत हो गया होता। आपको मालूम है कि न्यायालय ने एक समिति जैसी बना दी थी और उनसे कहा गया था कि बेहतर होगा कि आप इस मामले को समझौता करके, आपस में समझौता करके सुलह कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सोच करके देखिए कि ऐसा हो गया होता तो, या ये मानकर थोड़ी सी कल्पना कर लीजिए कि ऐसा 50 साल पहले हो गया होता तो, 100 साल पहले हो गया होता तो, चलिए हम थोड़ी सी हाइपोथेसिस लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों वो समझौता नहीं हो पाया, लेकिन चलिए जो संपन्न हुआ ये मामला वो कम बेहतर किसी भी मायने में नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरी स्थिति है आप देखिए, महाराष्ट्र में अभी सरकार बनाने को लेकर आप देख रहे हैं कि समझौते नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के बीच में समझौते नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी स्थितियों को देखकर मुझे लगा कि ठीक है अब थोड़े से समझौते पर बात की जाए, समझौते कैसे होते हैं, क्यों नहीं हो पाते हैं, इसके लिए क्या किए जाने चाहिए। तो आज मैं इसी विषय पर आप सबसे थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं और मेरे इस बात को, चूंकि मैंने अब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जैसे मामले और खासकर महाराष्ट्र में सरकार जैसे मामलों को लेकर के समझौते की बात की है, तो आप इसे उतने बड़े परिदृश्य में फैला कर ना देखें, आप तो इसे बेहद अपने व्यक्तिगत तौर पर देखें। जब हम समझौते की बात करते हैं तो ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, कोई नेगोशिएशन होने जा रहा है, नॉट एट ऑल। हम अपनी अपनी जिंदगियों के उन क्षणों को, उन वर्गों को, उन घटनाओं को याद करें जो समझौते की मांग करते हैं लेकिन समझौते नहीं हो पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके सामने समझौता संबंधी यह संकट अभी उपस्थित न हो। भाई भाई में तनाव होते हैं, बेटा और पिता में तनाव होते हैं, पड़ोसियों से तनाव होते हैं, समाज के दूसरे वर्गों के साथ विवाद हो जाते हैं, संपत्ति के विवाद होते हैं, व्यापार के विवाद होते हैं, पता नहीं किन किन चीजों के विवाद होते हैं। विवाद का मतलब ही है कि दो वर्ग हैं और दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं और दोनों किसी एक बात पर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए वह विवाद अब बना हुआ है। तो मित्रों आइए इसी पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जैसे भी हो विवाद समाप्त होने चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, वैसे तो हम बहुत ही सामान्य तौर पर इन चीजों को देखते और समझते हैं कि ठीक है यार, वो नहीं कर रहा है तो हमें ही क्या चिंता है, हम यूं ही उड़ा देते हैं। लेकिन जरा भी अगर आप थोड़ी गंभीरता के साथ इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि ये जो विवाद की स्थिति है, जिसे अदरवाइज आप कह लीजिए कि समझौता न हो पाने की जो स्थिति है, वह किसी भी शख्स के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। और ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये दोनों वर्गों के लिए है। यानी कि विवाद तो हमेशा दो वर्गों के बीच में ही होंगे या दो लोगों के बीच में होंगे, तो इससे किसी एक का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि सच पूछिए तो दोनों का नुकसान हो रहा है। और ये बात अलग है कि वह नुकसान प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या इन दोनों को बहुत साफ तौर पर इसका अनुभव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसका जो सबसे बुरा पक्ष है वो क्या है? अगर मैं इसे एक वाक्य में कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि ऊर्जा का विनाश। हमारी जो एनर्जी है वो जबरदस्त रूप से केवल समझौता न हो पाने की स्थिति के कारण व्यर्थ होती रहती है, सच पूछे तो नष्ट होती रहती है। और अगर हमारी ऊर्जा ही नष्ट हो रही है तो फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम ही नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब ऊर्जा की बात होती है तो हम सोचते हैं कि कोई एक ऐसी चीज है जो नष्ट हो रही। नहीं, ऊर्जा का मतलब है साधन, शक्ति। और शक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं है, शक्ति बहुत ही व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर समय। आप देखते हैं कि समझौता न हो पाने के कारण हमारा कितना समय बर्बाद होता है। क्या समय अपने आप में ऊर्जा का एक रूप नहीं है? मुझे लगता है कि समय तो शायद सबसे बड़ी ऊर्जा है। इसके बाद संपत्ति। संपत्ति में हम भौतिक संपत्तियां देखते हैं कि हमारा धन बर्बाद हो रहा है, हमारी जायदाद बिक रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि या तो हम मुकदमा लड़ रहे हैं या जो हमारे पास आना चाहिए था, समझौता अगर दो में हो जाता है तो डेफिनेटली आपके रास्ते खुल जाते हैं, कमाने के रास्ते खुल जाते हैं। वो रास्ते न खुलने की वजह से संपत्ति नहीं आ पा रही है, तो जो नहीं आ पा रही है, अदरवाइज जो आती वो भी तो कहीं ना कहीं बर्बाद ही हो रही है। और इसके बाद है श्रम। आप देखते हैं कि हम इसके लिए कितना लेबर करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, पता नहीं कितने लोगों से इसके बारे में बात करके अपना समय खराब करते हैं। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो वहां जा रहे हैं, उसकी तारीखें पड़ रही हैं, वकीलों के चक्कर काट रहे हैं, तो वहां समय भी बर्बाद हो रहा है, श्रम भी लग रहा है और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। और इसके बाद एक जो मुझे लगता है कि शायद किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है, वह है शांति, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड खत्म हो गया है। जैसे ही कभी भी आप शांति के साथ बैठे हुए हैं, मगन है, लेकिन याद आ गया तो आप देखिए कि पूरी की पूरी जो आपकी शांति है वो भंग हो जाती है। मन का उत्साह डल पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि उबलते हुए मीठे दूध के कड़ाहे में किसी ने एक बूंद नींबू के रस को निचोड़ दिया हो, डाल दिया हो। और जैसे ही उस खूबसूरत महकदार मीठे दूध में नींबू का वह एक बूंद पड़ता है, पूरा का पूरा जो दूध है वो फट जाता है। क्या हम ऐसा महसूस नहीं करते हैं? ऐसा महसूस करते हैं। तो आप सोच करके देखिए कि केवल एक छोटी सी स्थिति जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई है, हमारे जीवन की गुणवत्ता पर कितना नकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों, चूंकि वक्त हो चुका है, मुझे अपनी बात यही समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन एक अर्ज मैं आप सबसे करना चाहूंगा, और वो ये कि बेहतर होगा कि आप सब अपने जीवन की, अपने अपने जीवन की एक एक ऐसी घटना अपने दिमाग में ले आएं जिसके कारण आप इन सब को भोग रहे हैं, इन सब को महसूस कर रहे हैं, इन सब का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि आगे जब मैं बात करूंगा तो यदि आपके दिमाग में आपकी अपनी अपनी घटनाएं होंगी तो आप पाएंगे कि मेरी बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे, और हो सकता है कि स्वीकार करने के बाद उसका कोई हल भी निकल आए। तो दोस्तों, अब आज बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।